ओम शांति। आज की कथा का शीर्षक है पिता का सम्मान। मगध नरेश सम्राट अशोक अत्यंत धर्मप्रिय, न्यायी, उदार चरित्र एवं बुद्धिमान राजा थे। अन्य भी कई दुर्लभ गुण उनमें थे। यह सब होते हुए भी एक दुर्बलता भी उनमें थी। उन्होंने वृद्धावस्था में विवाह किया था। नई रानी का नाम था तिष्यरचिता ने अपनी उम्र और सुंदरता का उन पर ऐसा जादू कर दिया था कि वे पूरी तरह उसके बस में हो गए थे। पर तिष्यरचिता संतुष्ट नहीं थी। उम्र का इतना बड़ा अंतर उसकी शारीरिक भूख भोग विलास की पूर्ति नहीं कर पाता था। अशोक का एक पुत्र था कुणाल। वह लगभग तिष्यरचिता की ही आयु का था। पति से इस संबंध में अपनी रुचि हटाकर वह कुणाल की ओर आकर्षित हुई। उसने कुणाल को अपने महल में बुलाया। जब कुणाल वहां पहुंचा तो तिष्यरचिता ने बातों ही बातों में उससे प्रणय निवेदन कर दिया, अवैध संबंध का निवेदन किया। उसका प्रस्ताव सुनकर कुणाल हैरान हो गया और यह कहकर कि वह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया। माँ, आपका यह प्रस्ताव सुनकर मुझे बड़ी घृणा हो रही है। एक माँ अपने पुत्र से यह प्रस्ताव करे बड़ी अनहोनी बात है, क्योंकि बदचलन, अवैध संबंध, ऐसी बात पिता और पुत्र में होना ठीक नहीं था। तिष्यरचिता कुणाल की अस्वीकृति से क्रोध में बावली हो गई। पैर पटकते हुए उसने कहा, तुम्हारे जिन सुंदर नेत्रों ने मुझे घायल किया है उन्हें ज्योतिहीन न कर दूं तो मेरा नाम तिष्यरचिता नहीं। तिष्यरचिता जानती थी कि कुणाल इस बात को कहीं उजागर नहीं करेगा, तो भी वह चाहती थी कि कुणाल यहाँ से कहीं दूर चला जाए। उसी समय तक्षशिला के समीप शत्रुओं ने कुछ उपद्रव कर दिया। यह समाचार महाराजा को दिया गया। तिष्यरचिता ने अवसर पाकर महाराज को सलाह दी, अब कुणाल सब भांति समर्थ है, उसे युवराज भी बनाना ही है, अतः उसे राजकार्य और शत्रुओं को खदेड़ने का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। यदि आप मेरी माने तो इस समय उसे तक्षशिला भेज दें। महाराज की ऐसी ही आज्ञा हुई। कुणाल सेना के साथ तक्षशिला गए, उनकी पत्नी भी उनके साथ गई। राजकुमार ने अपनी नीति कुशलता से बिना युद्ध किए ही शत्रुओं को बस में कर लिया। उनके देखभाल करते हुए वहाँ अमन चैन स्थापित हो गया। इधर राजधानी में तिष्यरचिता ने महाराज को पूरी तरह अपने मोहजाल में फंसा लिया। वह राजकीय मुहर भी अपने पास रखने लगी। अवसर मिलते ही उसने महाराजा की मुहर से तक्षशिला के अधिकारियों को एक आज्ञा पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, कुणाल ने राज्य का बहुत बड़ा अपराध किया है। यह पत्र मिलते ही उसकी आंखों में लोहे की सलाखें डालकर उन्हें फोड़ दिया जाए, साथ ही उससे सारा धन छीनकर उसे राज्य से बाहर कर दिया जाए। पत्र गुप्त रीति से अधिकारियों के पास भेज दिया गया। उस पर राजकीय मोहर भी लगा दी गई। महाराज को कुछ भी पता न चला। तक्षशिला के सभी का अधिकारी राजकुमार कुणाल के निष्पक्ष चरित्र एवं उदारता के कारण उनसे बहुत प्रेम करते थे। महाराजा का आज्ञा पत्र देखकर वे हैरान रह गए। ज्यों त्यों करके उन्होंने वह आज्ञा पत्र कुणाल को दिखाया। कुणाल ने पत्र को देखकर कहा, पत्र किसने लिखा है इसका अनुमान मुझे है। मेरे पिता को इसका पता भी नहीं होगा, यह भी मैं जानता हूँ, परंतु इस पत्र पर महाराज की मोहर है, अतः राजाज्ञा का सम्मान होना ही चाहिए। कोई अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। यह कुकृत्य करने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं मिला। जब इस काम के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ, तो उस पितृभक्त राजकुमार ने अपने नेत्रों में अपने आप ही लोहे की सलाखें घुसेड़ ली। पिता की आज्ञा का सम्मान करने के लिए वह स्वयं अंधा हो गया। अपनी पत्नी को साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ा। दर दर का भिखारी बन गया। वे दोनों अपनी वीणा पर भगवान के सुरीले भजन बजाकर भीख मांगते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगे। महाराज अशोक इस पूरे घटनाचक्र से पूरी तरह अनभिज्ञ थे, पर पाप आखिर कब तक छिपता। भटकता हुआ राजकुमार वहां आ पहुंचा। पिता ने कुणाल को आकृति और स्वर से पहचान लिया। जब कुणाल को पता चला कि इस समय वह अपने पिता के सामने है और उन्होंने पहचान लिया है, तो उसने बड़ी उदारता से प्रार्थना की, मेरी सौतेली माँ को क्षमा कर दिया जाए। पर अशोक तिच्छ रसिता को क्षमा नहीं कर सके, उसे मौत की सजा दी गई। कुणाल के पुत्र को राज्याधिकारी बना दिया गया। कहने का भाव यही है कि कहा जाता है काम अंधा है। जब काम विकार से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, तो उसकी बुद्धि मारी जाती है, उसका विवेक मर जाता है। काम का दूसरा प्रतीक ही है क्रोध। काम के बाद क्रोध जागने लगता है। काम की तृप्ति नहीं हुई तो क्रोध आने लगता है। क्रोध ही के कारण, प्रतिशोध के ही कारण तक्षरसिता ने अपने पुत्र पर इतने संकट के बादल मंडराने का प्रयास किया, उसकी आंख भी फोड़ डाली और राज्य से ही बाहर कर दिया। ऐसे भिखारी अवस्था में जाते हुए फिर भी एक दिन आखिर पाप का भी कोई घड़ा भरने लगता है। आया तो उनके सामने उनके पिता ने पहचाना, और पहचानने के बाद भले ही उसने माँ को क्षमा कर देने के लिए मांगा था, याचना किया था, तो भी जो प्रतिशोध उसने लिया और जो अक्षम्य अपराध था, उसके लिए राजा ने उसको मौत की सजा देकर के छोड़ा। तो कहा जाता है कि संसार में व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, ये क्षणिक वासनाओं कामनाओं भोग के लिए ऐसे ऐसे पाप और अपराध किया करते हैं जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं किया जा सकता है। अपने स्वयं पुत्र के ऊपर ऐसी बुरी निगाह रखना, और बुरी निगाह की पूर्ति न होने के कारण, बुरी बदचलन की पूर्ति न होने के कारण इतनी बड़ी सजा दे देना, कहाँ तक एक व्यक्ति असुर आत्मा पाप आत्मा होकर के शूद्र कर्म में उद्दात हो जाता है, वैसे ही वास्तव में इनके भी द्वारा हुआ। और जो एक इतने बड़े राजकुल में सभ्यता के उस धरोहर की स्थिति में होते हुए भी कैसे कुलक्षण और कैसे पाप और कैसे अपराध के कर्तव्य में स्वयं इन्वॉल्व होकर के उतनी बड़ा सजा और कष्ट दिया गया। परंतु जो बुरा कर्म किया तो उसका फल तो उसे मिल के ही रहेगा, तो ऐसा ही हुआ। तो इसलिए हमको सदा अपने आप को निर्विकार बनाते हुए, अपने चरित्र को सदा दिगो रखते हुए, चरित्र को सदा संयोजते हुए, चरित्र की रक्षा करते हुए अपने जीवन को सदा अपने जीवन को ऐसा आदर्श बनाना चाहिए ताकि उससे हम स्वयं भी खुश रह सके, स्वयं की भी भलाई कर सके और औरों की भी भलाई कर सके। ओम शांति।